मोहम्मद भर की स्मृति में। मोहम्मद भर एक 24 वर्षीय फिलिस्तीनी युवक था जो शुजाइया से था, जो गाजा शहर का एक घनी आबादी वाला जिला है। वह डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था और ऑटिज्म के साथ जी रहा था। ऐसी परिस्थितियां जो उसकी परिवार पर निर्भरता और उसके सौम्य, अधिकतर गैर मौखिक व्यवहार को आकार देती थीं। दोस्तों और पड़ोसियों ने उसे एक शांत उपस्थिति के रूप में याद किया जो खिड़की के पास बैठकर नीचे की सड़क के जीवन को देखना पसंद करता था, जो जोरदार आवाज़ों से आसानी से डर जाता था और अपने माता पिता की सांत्वनादायक आवाज़ों पर निर्भर था। ऐसे क्षेत्र में जहां शोर, भय और विस्फोट रोजमर्रा की बातें हैं, मोहम्मद की चुप्पी उसका आश्रय थी और उसके माता पिता की जिम्मेदारी। उन्होंने अपना जीवन उसे दुनिया की क्रूरता से बचाने में बिताया। वह राजनीतिक नहीं था, वह लड़ाकू नहीं था, वह बस एक इंसान था जिसे देखभाल और दयालुता की जरूरत थी और जो दुखद रूप से अपनी मृत्यु के क्षण में न तो एक मिला और न ही दूसरा। उनकी मृत्यु की परिस्थितियां। 3 जुलाई 2024 को इजरायली सैनिक शुजाइया में दाखिल हुए। वे कवच में, राइफलों और ओकेट्स यूनिट के एक सैन्य कुत्ते के साथ आए। जब वे भर के अपार्टमेंट में घुसे, मोहम्मद डर से जड़ हो गया। वह चिल्लाए गए आदेशों को समझ नहीं सका। वह अपने आसपास के उथल पुथल को मुश्किल से समझ पा रहा था। कुछ ही सेकंड में सैनिकों ने कुत्ते को छोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और उसके माता पिता के अनुसार जानवर ने उसके हाथ और छाती को फाड़ दिया। छोटा कमरा उसकी चीखों से गूंज उठा। उसकी माँ ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन सैनिकों ने उसे पीछे खींच लिया। उसके पिता को दीवार से सटा दिया गया। फिर उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। अपने बेटे को फर्श पर खून बहता छोड़कर घर से निकाल दिया गया। कई दिनों तक माता पिता को हिरासत में रखा गया। जब उन्हें अंततः रिहा किया गया, वे टूटी फूटी सड़कों से जल्दी जल्दी लौटे और अपने बेटे के अवशेष पाए। उसका शव सड़ रहा था, कंक्रीट की दरारों में खून जमा हो गया था। वहां मृत्यु की बदबू थी जहां वह कभी खिड़की से दुनिया को देखता था। उन्होंने उसे धोया और दफनाया, लड़ाई के बीच आधिकारिक मदद मांगने में भी असमर्थ। एक मानव जीवन कमजोर, अक्षम, निर्भर, बुझ गया और बिना रिकॉर्ड या पश्चाताप के छोड़ दिया गया। 3. IDF में कुत्तों का परेशान करने वाला इतिहास। मोहम्मद की हत्या एक अकेली घटना नहीं थी, यह एक परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। इजरायली सेना द्वारा फिलिस्तीनियों को डराने, चोट पहुंचाने और अपमानित करने के लिए कुत्तों का प्रलेखित उपयोग। बीटसेलेम की 2015 की रिपोर्ट जब कुत्ते काटते हैं ने उन मामलों को सूचीबद्ध किया जहां ओकेट्स यूनिट के कुत्तों ने गिरफ्तारी अभियानों के दौरान निहत्थे नागरिकों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, को घायल किया। संगठन ने निष्कर्ष निकाला कि यह प्रथा क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार के बराबर थी। ब्रेकिंग द साइलेंस, पूर्व इसराइली सैनिकों का एक समूह ने गवाहियां प्रकाशित की हैं जो बताती हैं कि कुत्तों का उपयोग हिरासत में ले गए लोगों को आतंकित करने के लिए किया गया था। सैनिकों को आदेश दिया गया कि उन्हें उनके चेहरों पर भौंकने दें या जानवरों को बंधे हुए फिलिस्तीनियों को काटने या खींचने की अनुमति दें। हामोकिड और फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स डैश इसराइल ने हिरासत में ले गए लोगों से हल्फनामे एकत्र किए हैं जिनमें बताया गया कि विश्वासघात कक्षों में कुत्तों को लाया गया अपमान के साधन के रूप में। संयुक्त राष्ट्र समिति यातना के खिलाफ CAT और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन संदर्भों में कुत्तों के उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। चेतावनी दी है कि ऐसी विधियां इसराइल के अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों का उल्लंघन करती हैं। कुछ गवाहियां अपमान की ऐसी गंभीर दृश्यों का वर्णन करती हैं जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। कुत्तों को बंधे हुए कैदियों के पास खाने या मूत्र करने के लिए मजबूर किया गया या यौन प्रभुत्व का नाटक करने के लिए। हालांकि सभी दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता, अपमान और अमानवीकरण का पैटर्न वर्षों की रिपोर्टिंग में एक समान है। इस प्रकाश में मोहम्मद भर को मारने वाला हमला एक विसंगति नहीं था बल्कि एक संस्थागत प्रथा का भयावह चरमोत्कर्ष था जो नियंत्रण और आतंक को लागू करने के लिए जानवरों के प्रति मानव भय को हथियार बनाता है। 4. इसराइली सैन्य कानून के तहत दंडमुक्ति का तंत्र। इसराइली कानूनी तंत्र के भीतर फिलिस्तीनियों के पास न्याय प्राप्त करने का लगभग कोई रास्ता नहीं है। कब्जे वाले क्षेत्रों में सैनिकों द्वारा किए गए सभी कथित अपराध IDF के सैन्य महाधिवक्ता MAG के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि नागरिक अदालतों में। मैग अकेले यह तय करता है कि जांच शुरू की जाए या नहीं और लगभग हमेशा मना कर देता है। येश्तिन की 2023 की सांख्यिकी के अनुसार 2019 और 2023 के बीच सैकड़ों फिलिस्तीनी शिकायतों में से केवल 0.7% ही अभियोग की ओर ले गईं। 80% से अधिक बिना जांच के ही बंद कर दी गईं। फिलिस्तीनी पीड़ित सीधे आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं कर सकती, उन्हें अपने पक्ष में याचिका दायर करने के लिए इसराइली NGO पर निर्भर रहना पड़ता है। यात्रा प्रतिबंध, भाषा की बाधाएं और सैन्य तंत्र में पारदर्शिता की अनुपस्थिति भागीदारी को लगभग असंभव बना देती हैं। यहां तक कि नागरिक मुकदमे भी अवरुद्ध हैं। इसराइल के सिविल रॉन्ग्स लॉ 2012 में संशोधनों ने राज्य को युद्ध क्षेत्रों में होने वाले नुकसानों के लिए दायित्व से मुक्त कर दिया है। दंडमुक्ति की यह संरचना का अर्थ है कि जिस संस्था पर गलत काम करने का आरोप है वही यह तय करती है कि वह स्वयं की जांच करेगी या नहीं। मोहम्मद भर के मामले में, जैसा कि अधिकांश अन्य मामलों में, कोई जांच शुरू नहीं की गई, कोई सैनिक पूछताछ नहीं की गई, कोई जवाबदेही नहीं मांगी गई। 5. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निहितार्थ। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून IHL, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून IHRL और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के रोम संन्यास के तहत मोहम्मद भर की हत्या एक युद्ध अपराध और जिनेवा सम्मेलनों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। जिनेवा सम्मेलन। चौथे जिनेवा सम्मेलन के अनुच्छेद 27 और 32 नागरिकों को हिंसा, डराने, धमकाने और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा की गारंटी देते हैं। सामान्य अनुच्छेद 3 जीवन और व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, विशेष रूप से किसी भी प्रकार की हत्या, अंगभंग, क्रूर व्यवहार और यातना को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 16 पक्षों को घायलों और बीमारों की देखभाल करने का दायित्व देता है। एक अक्षम नागरिक को बिना उपचार के घावों से मरने के लिए छोड़ना इन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 147 के तहत जानबूझकर हत्या के रूप में योग्य होता है, एक गंभीर उल्लंघन। रोम संन्यास ICC अनुच्छेद 8282 और 3 जानबूझकर हत्या और अमानवीय व्यवहार को युद्ध अपराधों के रूप में परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 8B 21 वैयक्तिक गरिमा पर आघात को निषिद्ध करता है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि यह कार्य जानबूझकर किया गया तो एक गैर लड़ाकू पर कुत्ते को छोड़ना और सहायता से इनकार करना इन तत्वों को पूरा करता है। इस तरह की कृत्यों के बार बार होने वाले पैटर्न मानवता के खिलाफ अपराधों की सीमा को पूरा कर सकते हैं, अनुच्छेद 71F और 71H के तहत। मानवाधिकार संधियां। इसराइल के इकपुर, कैट और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि CRPD के तहत दायित्व यातना, जीवन की मनमानी वंचना और भेदभाव को निषिद्ध करते हैं। मोहम्मद की अक्षमताएं CRPD के अनुच्छेद 10 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 15 यातना से मुक्ति के तहत मामले को विशेष महत्व देती हैं। कमांड और राज्य की जिम्मेदारी। प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून और रोम संन्यास के अनुच्छेद 28 के तहत कमांडर आपराधिक रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं यदि वे दुर्व्यवहारों के बारे में जानते थे या जानना चाहिए था और उन्हें रोकने या दंडित करने में विफल रहे। एक राज्य के रूप में इसराइल गलत कृत्यों और उनकी जांच में विफलता के लिए जिम्मेदारी वहन करता है। इन ढांचों को एक साथ लेने पर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि मोहम्मद भर की मृत्यु अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक गैरकानूनी हत्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। मोहम्मद भर की मृत्यु की खबर मानवीय और विकलांगता अधिकार हलकों में फैल गई। डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल ने एक बयान जारी किया जिसमें गहरे झटके और दुख व्यक्त किया गया, इस घटना को विकलांग व्यक्ति की मानवीय गरिमा और जीवन के अधिकार का भयानक उल्लंघन बताया। इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइड ने हत्या को हृदय विदारक बताकर निंदा की और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जाँच की मांग की। संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर विशेष दूत ने इस मामले को संघर्ष क्षेत्रों में विकलांग लोगों की तीव्र भेद्यता के प्रतीक के रूप में उल्लेख किया। द गार्जियन, ले मोंद और हारेट्स की जांच ने उनकी मृत्यु को नागरिक क्षेत्रों में IDF के हमलावर कुत्तों के उपयोग की व्यापक जाँच से जोड़ा। फिर भी निंदा से परे कोई भी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय निकाय जवाबदेही की मांग नहीं कर सका। न्याय की अनुपस्थिति इस भावना को और मजबूत करती है कि फिलिस्तीनी जीवन, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था द्वारा असुरक्षित रहते हैं जो उनका बचाव करने का दावा करती है। सबसे अंधेरे अध्यायों की गूंज। मोहम्मद भर की मृत्यु की पूरी नैतिक गंभीरता को समझने के लिए गाजा से परे इतिहास के अंधेरे दर्पण में देखना होगा। एक विकलांग व्यक्ति की हत्या जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया मानवता के सबसे अंधेरे इतिहास को याद दिलाता है। यूजेनिक्स विचारधाराएं जो कभी ऐसे जीवन को बेकार मानती थी, नाजी एक्शन T4 कार्यक्रम जो विकलांगों को खत्म करता था, औपनिवेशिक और संस्थागत क्रूरता जो भिन्नता को मिटा देती थी। जब एक सैनिक एक कुत्ते को उस व्यक्ति पर छोड़ सकता है जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, यह उसी प्राचीन अमानवीकरण की तर्कशक्ति को पुनर्जनन करता है कि कुछ जीवन कम मायने रखते हैं। इतिहास ने हमें चेतावनी दी है कि जब समाज इस विश्वास को स्वीकार करता है तो क्या होता है। पवित्र का उल्लंघन, यहूदी नैतिक कानून और जीवन का मूल्य। मोहम्मद भर की त्रासदी यहूदी धर्म के नैतिक हृदय को भी घायल करती है, जिसके जीवन की पवित्रता पर शिक्षाएं मानव इतिहास में सबसे प्राचीन और अटल हैं। दो मूलभूत सिद्धांत पिकोआज नेफेश और बेतसेलेम एलोहिम उनकी मृत्यु की परिस्थितियों को न केवल एक मानवीय आक्रोश बनाते हैं बल्कि यहूदी नैतिक कानून का गहरा अपित्रण भी। पिकोआज नेफेश जीवन बचाने का कर्तव्य। यहूदी कानून में पिकोआज नेफेश कहता है कि एक भी जीवन को बचाना लगभग हर अन्य आज्ञा से ऊपर है। थलमुद सिखाता है जो एक जीवन बचाता है वह ऐसा है जैसे उसने पूरी दुनिया को बचाया हो। शब्बत पर भी जब लगभग सभी काम निषिद्ध हैं एक व्यक्ति को खतरे में पड़े किसी को बचाने के लिए कानून तोड़ना चाहिए। किसी घायल व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को नजरअंदाज करना इस पवित्र कर्तव्य का उल्लंघन है। जिन सैनिकों ने मोहम्मद को खून बहता छोड़ दिया उन्होंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन किया बल्कि अपनी धार्मिक परंपरा की इस केंद्रीय आज्ञा का भी उल्लंघन किया। पिकोआज नेफेश के अनुसार वे उसके जीवन को हर चीज से ऊपर संरक्षित करने के लिए बाध्य थे। उसे छोड़ देना न केवल हिंसा का कार्य था, यहूदी नैतिक भाषा में यह एक चिलुल हाशेम था, भगवान के नाम का अपवित्रण। बेतसेलेम एलोहिम ईश्वर की छवि में। उत्पत्ति के प्रारंभ से यह घोषणा आती है और ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। यह विचार बेतसेलेम एलोहिम यहूदी नैतिकता का आधार है और इसके माध्यम से आधुनिक मानवाधिकार कानून का। यह पुष्टि करता है कि हर मानव चाहे उसकी राष्ट्रीयता विश्वास या अक्षमता हो में दैवीय गरिमा होती है। एक कुत्ते को उस व्यक्ति पर छोड़ना जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता था इस छवि को नकारना था, ऐसा व्यवहार करना जैसे दैवीय चिंगारी केवल एक लोगों में मौजूद हो दूसरे में नहीं, ऐसा सोच वही है जिसे नबियों ने निंदा की थी। यशायाह का पुकार बुराई करना बंद करो भलाई करना सीखो न्याय की खोज करो उत्पीड़ितों को राहत दो हर जीवन में दैवीय को मान्यता देने की मांग करता है। इसलिए जिस कार्य ने मोहम्मद भर को मारा उसने न केवल मानवीय कानून का उल्लंघन किया बल्कि यहूदी नैतिक परंपरा की सबसे गहरी आज्ञाओं का भी उल्लंघन किया। इसने उस विश्वास को धोखा दिया जो इस बात पर जोर देता है कि जीवन का संरक्षण सीमाओं को पार करता है और किसी भी मानव के प्रति क्रूरता सृष्टिकर्ता के लिए अपमान है। नैतिक हिसाब। ऐसे लोगों के लिए जिनका अपना इतिहास उत्पीड़न की स्मृति रखता है नैतिक अनिवार्यता इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती। यहूदी धर्म की महानता शक्ति में नहीं बल्कि करुणा में निहित है, इसकी पवित्रता विजय से नहीं बल्कि दया से मापी जाती है। क्रूरता के लिए सुरक्षा को औचित्य के रूप में इस्तेमाल करना तोरा की नैतिकता को फिरौन की तर्कशक्ति के लिए बदलना है। आज पिकोआज नेफेश और बेतसेलेम एलोहिम का सम्मान करने का अर्थ है ये पुष्टि करना कि मोहम्मद भर का जीवन हालांकि वह फिलिस्तीनी अक्षम और गरीब था पवित्र था। इसका अर्थ यह स्वीकार करना है कि उनकी मृत्यु न केवल एक मानवीय त्रासदी थी बल्कि एक आध्यात्मिक विफलता थी, हम सभी में मौजूद दैवीय छवि के साथ विश्वासघात। उपसंहार गवाही देना। मोहम्मद भर को याद करना का अर्थ है उस चुपके से मिटाने को अस्वीकार करना जो अक्सर अत्याचारों के बाद होता है। वह लड़ाकू नहीं था, खतरा नहीं था, यहां तक कि उसे चिल्लाए गए आदेशों को समझने की क्षमता भी नहीं थी। वह डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म से ग्रस्त एक युवक था जो एक अपार्टमेंट में फंस गया था जब सैनिकों और उनके कुत्ते ने उसके घर को आतंक का स्थान बना दिया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन संरक्षित होना चाहिए था, जिसकी कमजोरियों को हिंसा के बजाय करुणा को प्रेरित करना चाहिए था। उसकी हत्या हर औचित्य के बहाने को छीन लेती है और कच्चा सच सामने लाती है कि क्रूरता वहां शुरू होती है जहां सहानुभूति समाप्त होती है और कानून का मूल्य इस बात से मापा जाता है कि क्या वह शक्तिहीनों की रक्षा करता है। उनकी कहानी दया से अधिक की मांग करती है। यह मांग करती है कि हम उस तंत्र को सीधे देखें जिसने इसे संभव बनाया, एक कब्जे का शासन जो क्रूरता को सामान्य करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो इसे क्षमा करती है और एक सामूहिक नैतिक थकान जो त्रासदी को दोहराने देती है। जो रह जाता है वह है याद करने का कर्तव्य, न कि भावुकता के इशारे के रूप में बल्कि नैतिक स्पष्टता की मांग के रूप में। उनकी मृत्यु इतिहास के रिकॉर्ड में एक विसंगति के रूप में नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में है। एक ऐसा समाज जो एक अक्षम व्यक्ति के खून बहते शरीर को देख सकता है और कुछ भी महसूस नहीं करता, वह उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिसे पिछली सभ्यताओं ने विनाश की ओर बढ़ते हुए अपनाया था। उसे याद करना इस उदासीनता के खिलाफ उसका नाम बोलने का अर्थ है। मोहम्मद भर, एक बेटा, एक जीवन जो मायने रखता था, दुनिया के विवेक में एक घाव। संदर्भ: प्राथमिक विवरण और समाचार कवरेज। 1. मोहम्मद भर की हत्या, विकिपीडिया, अंतिम अपडेट 2025। 2. ले मोंद, जुलाई 2024। गाजा में एक डाउन सिंड्रोम वाले युवक की इजरायली सेना के कुत्ते द्वारा हत्या का कष्ट। 3. हारेट्स, जुलाई 2024। डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त गाजा के व्यक्ति की आईडीएफ हमलावर कुत्ते द्वारा हत्या। द गार्जियन, अरिज, जून 2025। युद्ध के हथियार, इसराइल का हमलावर कुत्तों का उपयोग। 5. रिलीफ वेब, इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड, जुलाई 2024। इस्लामिक रिलीफ मोहम्मद भर की हत्या से हृदय विदारक है और जांच की मांग करता है। 6. डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल, जुलाई 2024। गाजा में मोहम्मद भर की मृत्यु पर बयान। मानवाधिकार और कानूनी दस्तावेजीकरण। 7. बीत सेलिम, कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों के लिए इजरायली सूचना केंद्र, 2015। जब कुत्ते काटते हैं, कब्जे वाले क्षेत्रों में सैन्य उद्देश्यों के लिए कुत्तों का उपयोग। 8. हामोकेड, व्यक्तिगत रक्षा के लिए केंद्र, 2019। हिरासत में दुर्व्यवहार, ओफर और मेगिदो जेलों से गवाहियां। 9. ब्रेकिंग द साइलेंस, 2014-2023। कुत्तों के उपयोग और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ व्यवहार के बारे में पूर्व आईडीएफ सैनिकों की गवाहियां। 10. येश दिन, मानवाधिकारों के लिए स्वयं सेवक, 2023। डेटा शीट, वेस्ट बैंक में आईडीएफ सैनिकों पर कानून प्रवर्तन 2019-2023। 11. ह्यूमन राइट्स वॉच, 2021। एक सीमा पार की गई, इसराइली प्राधिकरण और अपार्थाइड और उत्पीड़न के अपराध। 12. संयुक्त राष्ट्र यातना के खिलाफ समिति, cat/c/isr/co/5, 2016 और 2022। इसराइल की पांचवी और छठी आवधिक रिपोर्टों पर समापन टिप्पणियां। 13. मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय, ओहचर, 2024। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर विशेष दूत की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां। 14. जिनेवा सम्मेलन, 1949 और अतिरिक्त प्रोटोकॉल आई और 2, 1977। 15. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रोम संन्यास, 1998। 16. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, इकपुर, 1966। 17. यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के खिलाफ संधि, CAT, 1984। 18. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि, CRPD, 2006। 19. अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग, 2001। अंतर्राष्ट्रीय रूप से गलत कृत्यों के लिए राज्यों की जिम्मेदारी पर लेख। यहूदी नैतिक और धार्मिक स्रोत। 20. हिब्रू बाइबल, तनाक। उत्पत्ति 1:26-27, मानवता बेतसेलेम एलोहिम, ईश्वर की छवि में बनाई गई। 21. तलमुद बाबली, सनहेद्रिन 37a। जो एक जीवन नष्ट करता है, वह ऐसा है जैसे उसने पूरी दुनिया को नष्ट किया, जो एक जीवन बचाता है, वह ऐसा है जैसे उसने पूरी दुनिया को बचाया। 22. तलमुद बाबली, योमा 85b। पिकुआच नेफेश का सिद्धांत, जीवन को बचाना शब्बत पर भी लगभग सभी आज्ञाओं से ऊपर है। 23. मिशनेह तुराह, हिलखोत शब्बत 2-1, मैमिनिड्स। जीवन का खतरा शब्बत से ऊपर है। 24. रबी जोनाथन सेक्स, 2011। विविधता की गरिमा, सभ्यताओं के टकराव से कैसे बचें। लंदन, कॉन्टिनम। 25. रबी इब्राहिम जोशुआ हेशेल, 1965। द प्रॉफिट्स। न्यूयॉर्क, हार्पर एंड्रो, न्याय और दैवीय छवि पर। द्वितीयक विश्लेषण और संदर्भ। 26. Physicians for Human Rights, Israel, 2020। पंक्तियों के बीच, संघर्ष क्षेत्रों में चिकित्सा उपेक्षा और रुकावट। 27. Amnesty International, 2023। इसराइल ऑप्ट, युद्ध क्षेत्रों में हत्याओं के लिए दंडमुक्ति का पैटर्न। 28. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक का कार्यालय, 2021। फिलिस्तीन राज्य में स्थिति, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट।